نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي البر والبر اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ جل جلالہ اس وقت انسان کو کسی نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں, اس نیک عمل پر انسان کے قلب اور دل پر مختلف اثرات پیدا ہوتے ہیں. دیکھنے میں وہ بڑا ہی اچھا ستھرا عمل ہوتا ہے انسان کا, لیکن دل پر جا کر اس عمل کی اصل حالت اور کیفیت جو ہے وہ بن جاتی ہے, اور آخرت کے جو فیصلے ہوں گے انسان کے اس عمل کے سحر پر نہیں بلکہ دل میں جا کے جو اس کی حالت بنی ہے اس پر اس کی آخرت کے فیصلے ہوں گے. عمل کیا ہم نے کوئی اور اس عمل کو شیطان جو ہے اس پہ انسان کو نازاں کر دیتا ہے کہ بھائی اس نے یہ عمل کیا ہے, کیفیات دل پہ جا کے بن جاتی ہیں, اس کی تکبر پیدا ہو گیا اس عمل سے, وہ جب پیدا ہو گیا دکھاوا پیدا ہو گیا, رعونت آ گئی, عجب آ گیا, گھمنڈ آ گیا. عمل وہ ظاہر ہے ہم بہت اچھا عمل کیا ہم نے, اندر جا کے اس کی کیفیت جو ہے وہ بدل رہی ہے عمل کی. بظاہر اچھا عمل کیا ہے اور بالکل ٹھیک ہے, لیکن حالات جو دل پہ جا گئے وہ بدل جاتے ہیں انسان کے, وہ مختلف ہو گئے بالکل, کیفیت بدل گئی. اللہ نے کوئی مقام دے دیا, علم مقام دے دیا, روحانی مقام دے دیا, تو وہ اندر کیا کیفیت پیدا ہوگی اس سے کہ وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ تو میرا حق تھا, میں 7 سال 8 سال علم پہ لگائے تو میں واقعی میرا حق تھا, میں امام ہوں یا میں فلاں ہوں یا فلاں ہوں. روحانی کہ جی بس یہ تو میرا حق تھا کہ میں نے بڑا مجاہدہ کیا ہے اور میں تو بڑے ذکر اذکار کیے ہیں, تو یہ تو مقام تھا میرا. یہ کیفیت انسان کے اندر آتی ہے اور ضرور آتی ہیں, دل پر جا کے معاملہ خواب بنتا ہے انسان کے جاتے ہیں. ظاہر میں سب ماشاء اللہ بہت پیر صاحب ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے محدث ہیں, بہت بڑے مدرس ہیں, یہ ہوتا ہے نا, لیکن وہ کیا اس میں گرم پیدا ہوا کہ میرا حق تھا, مجھے چاہیے تھا ہونا, ایسا میں نے محنت کی ہے, اندر اس کی کیفیت بنتی ہے. بڑی آسانی سے اس کا تجزیہ کر لیا جاتا ہے اگر اس رتبے سے اس کو ہٹا دیا جائے, کسی شیخ نے اجازت دی یا کسی نے اس کو اس مقام پہ رکھا کہ بھئی آپ فلاں 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 درستے ہیں تحقیر دیں, اس کو ہٹا دیا جائے, اس وقت دل پہ کیا بنتی ہے اس کیفیت دیکھنے والی ہے. کسی شیخ نے اجازت دی فلاں جگہ آپ کام کریں, ایسے کریں, بس لیتے ہیں کسی وجہ سے اللہ کی مرضی اس کو روک دیا گیا کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں, اس وقت دل کی کیفیت کیا بنتی ہے. اگر دونوں چیز میں یکساں ہیں اس کی کیفیت, ملنے پر اس کو خوشی بھی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے کام ہمارا شیخ نے کہا ہم کام کر رہے ہیں, اور جب سٹاپ سٹاپ کر دیا تو اس کو افسوس بھی نہیں, پتہ بھی نہیں, رنجی کوئی نہیں, تو خام بات ہے. یہ کیفیت جو ہیں دل کے اندر بننا, یہ اصل میں ہے جسے اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلے ہوں گے آخرت کے اندر. मामला जो है हकीकत में दिल के अंदर जाकर काम बनता है। इसकी बड़ी प्यारी मिसाल आपको दे देता हूँ जो ज़हन में आ रही है, सादी मिसाल है। दिल के अमल के साथ क्या ताल्लुक है? कभी किसी जिम्मेदार से पूछें, खेती बाड़ी जो करते हैं, हमने तो जिम्मेदारी की है, हमें पता है जो कल्चर करता है, जो जिम्मेदारी करता है, कितनी अच्छा बीज ले ले, खूबसूरत से खूब सीड ले ले वो, और वो बीज क्या हर जमीन पे उसको फल दे देगा? नहीं, उस बीज का कमाल नहीं होगा। कमाल किसका होगा? जमीन का होगा। जमीन देखेगा फर्टाइल कौन सी है, नहरी कौन सी है, पानी कौन सा आता है, आवी कौन सी है, इसमें कितनी ताकत है, फिर नहीं है तो उसको जमीन को बनाएगा, उसके बाद वो उसमें बीज डालेगा। जब बीज डालेगा तो क्या होगा? फिर वो फल देगा। अब वो जमीन को नहीं देखता, किसी सतह पर वो जमीन है और उसमें बीज डाल देता है तो फल की तो गुंजाइश ही नहीं मिलती। समझाई? इसी तरह कल्ब जो है इंसान का, जिस तरह कहे ना कि जी दुनिया आखिरत की क्या है, खेती है, तो कहाँ खेती का किस जमीन में बोएं, कौन सा बीज है? वो अमल का बीज है और दिल उसकी खेती है, दिल उसका जमीन है। तो कितने पहला इशारा उसमें मिला है कि भाई अगर तुमने एक अच्छा अमल करना है तो उससे पहले क्या करना है तुम्हें? दिल को बनाना होगा, दिल पे मेहनत करनी होगी, तो तब जाके ये जो नमाज आप ज़ाहिरी अमल कर रहे हैं या एक छोटा समय अमल जो भी आप कर रहे हैं नेकी का, एक आदमी को पानी पिला दी, बहुत बड़ा अमल है। अल्लाह आपने एक आदमी की उंगली पकड़ के एक सड़क क्रॉस कर दी, बहुत बड़ा अमल है। बख्शिशें होती हैं इस पर, बख्शिशें होती हैं, ये कुछ छोटी बात नहीं है। कितनी छोटी बात, जाते जाते आपने किसी आदमी को ऐसे हंस के देख लिया, बहुत बड़ी बात है। मदद कर दी किसी को तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। यानी कोई चीज़ भी जो है नेकी जो है जर्रे से मुशाबा की है अल्लाह सुभान व तआला ने, आखिर कोई कीमत है जर्रे की? तो कहा है ना जर्रे के बराबर, नेकी तो बहुत ही बड़ी चीज़ है, और इतनी बड़ी चीज़ है कि एक जर्रे की नेकी आपको जन्नत मिले जाएगी, इसको छोटा समझ नहीं सकते। तो कल जो है, अगर कल हमारा नहीं बना तो उसमें कितने खूबसूरत बीज डाल दें। सही रात तहज्जुद पढ़ते रहें, सही रात इबादत करते रहें, सही रात कुरान की तिलावत करते रहें, बड़े बड़े अमल करते रहें, बड़ी बड़ी तकीदें करते रहें, दर्स और हदीसें सुनाते रहें, लेकिन खेती जो वहाँ जो बीज आपका जो वहीं जाके काम करेगा, तो दिल की सतह बेहतर होगी। इसमें कितना ज़रूरी है दिल का बनाना, मुझे आप बताएं। ऐसे इतने अल्लाह पाने के कसरत से जिक्र करो, कसीरन कसीरा कसीरन कसीरा, पूरा कुरान बढ़ाओ अगर अल्लाह का जिक्र करो। मतलब क्या है कि अपने दिल को बनाओ, अल्लाह के जिक्र के साथ अपने दिल को आबाद करो, सफाई करो उसके दिल की, ताकि जो अमल अल्लाह तुम्हें तौफीक दे वो निखर जाए। ये जन्नत और ये आखरत में बड़े बड़े अजीब सीन और जो होंगे ना, नज़ारे नजर आएंगे देखने में, बड़े बड़े जो जन्नत के ठेकेदार होंगे और जिन्होंने अपने अमलों पर बहुत फ़ख्र किया होगा, अपने अमालों पर फ़ख्र किया होगा, तो उनको लेफ्ट की तरफ धकेला जा रहा होगा, लेफ्ट की तरफ। अब बाज़ लोग जो गुनाह में डूबे होंगे, गुनाह से गुनाहगार होंगे, उनको राइट की तरफ लिया जा रहा है, अजीब फैसले होंगे। वजह यह है कि दिल की तरफ से जो अमाल थे उस पर इंसान मुनसर उस वक्त कर सकता है जब दिल इंसान का साफ और सुथरा होगा, वरना वही नमाज जाके अंदर जो पढ़ती है उस ज़मीन पर, तो एक अजीब किस्म की हैबत पैदा हो जाती है उस नमाज की, उन कैफियत की, उन जिक्र की, उन तलावत की। इवन एक अल्लाह का नाम बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये नजर नजर आएंगे आखिरत में, पता लगेगा इसका हिसाब, समझ जाना चाहिए हमें। बनी इसराइल के एक शख्स थे, शौक़ हुआ उनको बड़ी इबादत का, कि हम इबादत करें, और उसी शौक में निकल गए अल्लाह की इबादत के लिए, और जाके जगह तलाश की। समंदर था, समंदर के अंदर एक टीला था, तलाश कौन सी कर रहा है वो शख्स बात कि जहाँ ना खाना ना पीना ना जड़ी ना बूटी है, लेकिन ईमान का तकाजा था और तकवल कितना था अल्लाह का कि मैं अल्लाह के लिए चला हूँ, तो मैंने तो इबादत करनी है, बाकी काम उस खुद अल्लाह ने आप खुद कहा है कि रिज़्क देना मेरा काम है, तेरा काम नहीं है। जिस चीज़ को अल्लाह ने अपने ज़िम्मे लिया है वो हमने अपने ज़िम्मे ले लिया, तभी ख्वार और जलील है। और जो अल्लाह ने हमारे सुपुर्द किया था वो अल्लाह के सुपुर्द कर दी। जब कह रहे नमाज पढ़ो, जी अल्लाह तौफीक देगा तो पढ़ लेंगे, है ना, ये फलां काम कर लो, जी अल्लाह तौफीक देगा तो कर लेंगे, और जब रिज़्क का जी मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? रोटी कैसे कमाएंगे, रोटी पानी कैसे चलेगा, रोटी रोजी कैसे चलेगा जी अगर हम खुद उठे नहीं चले नहीं तो। तब वो अल्लाह की तवक्कल पुष्टि कुछ चलेगा जाकर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इबादत शुरू कर दी अल्लाह की। अल्लाह के याद मस्त हो गया, खूब इबादत में जुड़ के एक साल नहीं, दो साल नहीं, तीन साल नहीं, चार नहीं, हदीस में आता है 400 साल 400 ईयर्स ये उम्र भी क्या होगी उनकी। हकीकत यह है कि जिस वक्त इंसान अल्लाह के साथ दोस्ती करके और नेक अमाल करता है, सालाह अमल करता है, तो अल्लाह ताला उसकी हर चीज़ में बढ़ोतरी देते हैं। उम्र भी तरक्की हो जाती है, याद रखें उम्र भी बढ़ जाती है, रिजक भी बढ़ जाता है, औलाद भी बढ़ जाती है, बरकतें आनी शुरू हो जाती हैं, हर चीज़ जो है उसकी अल्लाह ताला बढ़ाना शुरू कर देते हैं, बढ़ना शुरू हो जाती है, खैर खैर नजर आना शुरू हो जाते हैं उसकी ज़िंदगी के अंदर, खैर ही खैर होते हैं। तो सच्चा पक्का इंसान अल्लाह के दिए कानून के मुताबिक अल्लाह की इबादत करता है तो बस उसके रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। वो शख्स जब गए इबादत की तो 400 साल अल्लाह ने उम्र दी, करता रहा सीज दे अल्लाह की उम्र बढ़ाता रहा 400 साल। और खाने पीने का इंतज़ाम सरकारी था माशाल्लाह, अल्लाह ने एक दरख्त पैदा किया वहाँ पे, वो अनार था, जन्नत का अनार होगा, एक अनार तोड़ते थे माशाल्लाह पूरा दिन की भूख ख़त्म हो जाती थी, पूरा जूस में पूरे नरिशमेंट हर विटामिन मिलता था उसमें अल्लाह के फजल से, चश्मा जारी कर दिया, पानी फ्रेश पानी मिलता था वहाँ से, बस अपना अनार खाया पानी पिया अल्लाह की याद में मस्त रहे, अल्लाह को याद करते रहे। आखिर वक्त आ गया, 400 साल गुजर गए तो वक्त आ गया, अल्लाह ने बुलाया मलकुल मौत तशरीफ लाया, वहीं आ गया आपका बुलावा आ गया ठीक। तो भाई मैंने तो ये नीयत की मैं अल्लाह के पास अब जाऊँगा तो मैं 2 रकात नफिल पढ़ाऊँगा उससे पहले, और नफिल पढ़ के जब आखिर रकात होगी इसके सजदे में जाऊँगा तो उस वक्त आप मेरी जान निकालें। कहते हैं अल्लाह ताला ने पहले ही मुझे कह के भेजा है किसकी जान इस तरह निकालना है, मेरे महबूब बंदा है तो पहले ही मैं तैयारी करके आऊँ, अभी दरख्वास्त भेजने की ज़रूरत ही नहीं तुझे। उसने वज़ू किया, वज़ू करके नियत बांधी और नमाज में चला गया, पहली रकात की, दूसरी रकात की, सजदे में गया, सजदे में जाने के बाद उन्हें रूह को कब्ज़ कर लिया। क़यामत के रोज़ बताया जाता है कि वो शख्स आएगा अल्लाह का हुज़ूर पेश होगा, ना क़यामत के नज़ारे अजीब होंगे, वहाँ हिसाब किताब के नज़ारे अजीब ही होंगे। अल्लाह ने बुलाया उसको, बिल्कुल फैसला किया बेहिसाब अल्लाह ताला ने कहा उसको, फैसला उसको लिख दिया गया और कह दिया कि अज़हबू बी अब्दी, अल्लाह ताला भेजो ले जाओ इस आदमी को, अला जन्नती बी रहमती, मेरी रहमत से इसको जन्नत में दाखिल कर दो, ये अल्लाह का फैसला था। ऐसा वो बेअब्द ही इला जन्नति बे रहमती, उसने कहा जी, कहते ये अल्लाह बे रहमती या बे अमली, अमल से जाऊँगा या रहमत से जाऊँगा। अल्लाह ताला ठीक है, वापस ले आओ इसको, पहले तो बेहिसाबी जा रहा था, कहते हैं मीज़ान कायम कर दिया जाए इसको, अल्लाह ने हुक्म फरमाया मीज़ान कायम कर दिया गया, मीज़ान समझते हैं फैसला, कहते रखो ही नेकी है इसकी 400 साल की, 400 साल की निकी रखी जा रही है, ओ पल्ला माशाल्लाह भारी भर है। कहते एक एक सिर्फ इसकी एक नेमत जो मैंने इसकी दी थी वो दूसरे पल्ले में रख दो, सिर्फ एक नेमत आँख को रख दो, अल्लाह ताला ने कहा चल भाई आँख का शुक्र में तू पेश हो, कर इबादत इस मुकाबले में। अब एक नेमत अल्लाह की आँख इतनी बड़ी है कि 400 साल की इबादत उसकी फेल हो गई खत्म। कहते अब अल्लाह ताला फिर फैसला था, ऐसे वो बे अब्द ही इला जहन्नुम बे अदरी ही, पहले क्या कहा था कि मेरी रहमत से इसको जन्नत मिले जाए, कहता अल्लाह कहता अब मेरी अदल की वजह से, मैंने अदल किया है, मेरा अदल ये कहता है कि उसको जहन्नुम में दाखिल कर दो। वो तो लगा चीखने का, अल्लाह ताला माफ़ कर दो गलती हुई, तेरी रहमत की वजह से मैं जा सकता हूँ, अमल की वजह से नहीं जा सकता। कितने अमल थे देखे 400 साल की उम्र थी, लेकिन दिल के अंदर कैफियत क्या बना दी उसे अमाल ने, अल्लाह के सामने कहा जी मेरा अमल है, घमंड था उसको मेरे अमल के साथ मैं जाऊँगा, कितने अमलों के साथ किस तरह दो उसको दखील दिया अल्लाह पाक। अजीब चीज़ है, यानी जन्नत के अंदर जब आखिरत के अंदर तो बहुत अजीब अजीब नज़ारे पेश आएंगे इंसान को देखने के लिए, समझना चाहिए। एक शख्स इसी तरह अल्लाह ताला कहेंगे उनसे, हदीस में आता है कि भाई गुनाहगार शख्स था बहुत, पेश किया जाएगा अल्लाह के हुजूर में, कि निकालो उसके अमाल सारे, भाई अमाल के सारे गुनाह की शीट फैली है पूरी मीलों दूर तक, कहे अल्लाह यही है मेरे पास तो सारा भाई कुछ नहीं की उसमें, अल्लाह पाक पढ़ाएंगे उससे, चल ठीक इस तरह कर तू, टाइम हमारे पास तो नहीं, तो खुद पढ़ के सुना क्या क्या गुनाह किए हैं। सुभानअल्लाह, अभी कहीं किस्सा सुना रहे हैं आखिरत का, वो भी आदमी जो होगा वो कि अच्छा जी वो आदमी आया तो दुनिया से आएगा, जिसके इतने गुनाह हों तो कितनी बदमाशी की होंगी, कितना हेर फेर दुनिया में किया होगा, कोई चीज़ उसकी सही होगी नहीं ना, हर जगह हेर फेरी से काम चला होगा उसका, तो वो तो चैंपियन था हेर फेरी का, उसने कहा चलो यहाँ भी काम चला देते हैं, माँ ने बड़े बड़े धोखे दिए तो यहाँ काम चलेंगे, उसने पढ़ना शुरू किए, जितने बड़े गुनाह थे उनको पीता चला गया और छोटे गुनाह पढ़ता चला गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह के सामने काम कर रहे हैं, आदत पड़ी थी ना उसको चोरियाँ करने की, क्या करता गया, बड़े जो थे छुपाता गया और छोटे बताता गया, बस सुनाए जा रहे हैं, सुना दिए सारे कहते वहाँ सुना दिए अल्लाह ताला का जी सुना दिए, यही गुनाह देते जी बिल्कुल ये कि देख लिया और कहते है ही कोई नहीं जी, यही थे बस, उसने छोड़ो कुछ तो कम होगा मामला सब बड़े तो छुपाओ ना, अल्लाह ताला का ठीक है भाई, फरिश्ते से कहेंगे इस तरह करो जो इसने गुनाह बताया ना सारी के सारे नेकी बदल दो, अभी वो सुनेगा चला चला अभी ठहर अभी नहीं अभी कुछ गुनाह रह गए थे थोड़े से मेरे मैंने पेश करने, अल्लाह के नहीं समझ सुनाई हदीस तो उसके बाद इतना हंसे कि आपके चेहरे वाग से ना दंदान शरीफ हंसाने शुरू, दो आदमी को पेश किया जाएगा और जहन्नुम से बुलाया जाएगा, कोई बुलाओ जहन्नुम से कि फैसला करते हैं अल्लाह ताला कहेगा, दोनों आदमी आ गए, अल्लाह पाक ने कहा भाई दोनों को देखा और देखने वाले के बल्कि वापस जहन्नुम में दाखिल कर देने को फैसला हो गया, दोबारा जाओ जहन्नुम, एक जो शूट मार रहा है सुन के फैसला, जैसे बड़ी टी पार्टी में जा रहा है किसी बड़ी तेजी के साथ जा रहा है जहन्नुम की तरफ, टपक रहा है उसको भाग रहा है तेजी के साथ, और दूसरा जो है बहुत आस्ता आस्ता चल रहा है, अल्लाह ने दोनों को बुला के लाओ वापस, एक हरकत किया कि एक इतना तेज जा रहा है, अल्लाह तो खबीर बसीर है लेकिन उसकी रहमत के नजारे हैं ना ये आखिरत जो होंगे, तो वो दोनों को बुला ले, दोनों आ गए, अल्लाह पाक कहे भाई पहले मुझे बता तू को तेज चलाते तुम जब जहन्नुम में जा रहा तुझे क्या खुशी थी, या अल्लाह तो खबीर बसीर है खुशी तो कोई नहीं, सारी जिंदगी तेरी नाफरमानी करता है, सुभान अल्लाह क्या यानी सोच देखो उस आदमी की, इस सारी जिंदगी नाफरमानी की है, कोई एक दफा तो फरमानी करता, मैं सोच चलो सारी जिंदगी नाफरमान हूँ एक तो बात मान जाऊँ अल्लाह ताला की मैं जल्दी से चलना शुरू हो गया, और तेरी फरमानबरदारी पे जा रहा था और कोई मजा नहीं था, तो तू भाई तू जो आस्था से शुरू हुआ तेरे क्या मसला था, कहते अल्लाह मैं ये सोचता जा रहा था कि मेरी उम्मीद तो तेरी रहमत से ये नहीं थी कि तू मुझे निकाल के दोबारा भेज देगी, क्या मकसद क्या है मसला क्या हो गया, अल्लाह ताला ये क्यों कर रहा है ऐसे, अल्लाह ताला के दोनों को जन्नत में भेज दो। तो मेरे भाइयों ये जो है दुनिया एक अजीब चीज़ है हमारे सामने, बहुत अजीब चीज़ है, यहाँ एक सबक इंसान को पक्का करना चाहिए, सबसे जरूरी चीज़ है सारी जो मैं बातें आपको बताएंगे, हकीकत यह है कि हम बहुत कमज़ोर आदमी हैं, अल्लाह हमें नियमित में देता है कैसे कैसे अमाल अता फरमाता है, कैसी कैसे अल्हम्दुलिल्लाह अमल देता है, एक दफ़ा अल्लाह का देना बहुत बड़ा अमल है, तो जिस वक्त कोई इंसान नेक अमल करे अल्लाह तौफीक दे रहा हो, तो दिल की कैफियत जैसे मैंने बताई कि वम दिल में जाके रिया बनता है, तकब्बुर बनता है, उजब बनता है, घमंड बनता है, और कहीं से कहीं इंसान को निकाल देता है, बड़े अच्छे अच्छे अमल हम बर्बाद कर देते हैं, हालत ये होनी चाहिए कि जिस वक्त छोटा सा भी कोई नेकी इंसान के दिल में आ जाए, याद रखें अभी कैफियत बनानी है, ये छोटी सी भी नेकी अगर दिल के अंदर आ गई तो इस कदर इस आजी आ जाए इंसान के अंदर, इस कदर झुक जाए अल्लाह के हजूर में वो कल्ब कि सुभान अल्लाह ये सोचते हुए हकीकत नहीं सोचते हुए कि मैं इस काबिल था ही नहीं, ये किस तरह मैंने तेरे नाम को अपनी जुबान से कह दिया, मैं और कहां तेरा जिक्र, यानी अल्लाह के आमाल को इतना बुलंद समझे जो हैं, यानी अल्लाह का नाम इतना बुलंद है, इतना बुलंद है अल्लाह कि जिसका इंसान को तसव्वुर नहीं कर सकता, तो आदमी जो इतने आराम से हम बैठ के ले लेते हैं और लेने के बाद डकार मार के जैसे हमने कुछ किया ही नहीं, यही चीज़ अल्लाह को नापसंद है, यही चीज़ क्या अभी इसके दिल में जो है वो कैफियत ही नहीं आ रही, इस अमल को समझने की कैफियत नहीं है, नमाज जैसी चीज़ जिसको मैंने कहाँ दी, किस तरह इजाज़त दी, कैसे मिली, क्या इनाम, सबसे पहले जिसका इसका फैसला होगा, इसको नमाज पढ़ने के हिसाब पता ही नहीं क्या हुआ दिल के अंदर, कहाँ गिन गया, और पढ़ लीजिए चले गए। लेकिन ये चीजें नहीं है ऐसे, ये चीजें ऐसी नहीं है, सब दिल से निकलने वाली चीजें। यानी हर अमल के बाद इंसान अल्लाह जब तौफीक दे दे तो इस कदर इंसान झुक जाए, इंसान का कल्ब इस कदर आजीज हो जाए, इस कदर तवाजा आ जाए, कोई मनसिब दे दे, कोई रुतबा दे दे, कि उसमें इंसान बिल्कुल यानी फना हो जाए कि ये मैं था इस काबिल जब अल्लाह ने मुझे इनाम दिया, मैं था कि आज मैं मस्जिद में चल के आ जाता। हज़रत शाह नक्शबंद रहमतुल्लाह, क्या अजीब बात है उनकी, बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह हमारे सिलसिले के जो हेड हैं, किसी ने उनसे सवाल किया कि हजरत आपकी भी कोई करामत है? करामत है ही नहीं आपकी, करामत तो दिखाई नहीं आपने। तो क्या जवाब दिया उन्होंने, सुभान अल्लाह, देखें आप कितने बुलंद आदमी थे, कहने की इससे बड़ी मेरी और क्या करामत है कि इतने गुनाहों के बावजूद भी मैं जमीन पे चल रहा हूं, जमीन ने मुझे धसाया नहीं। अल्लाह हु अकबर, यानी किस कदर अंदाज देखें कि मेरे गुनाह इतने हैं, इस कदर मेरे गुनाह से मुझे, मैं इस जमीन पे चल रहा हूं जहां की पिछलों की मिसालें कुरान में दी अल्लाह पाक ने, मैं तो उससे कहीं गंदा आदमी हूं, ये मेरी करामत है कि अल्लाह ताला मुझे धंस रहा नहीं रहा जमीन के अंदर, वरना मुझे धंस जाना चाहिए था। बताएं किस कदर उनके कलूब पे तवाजा थी और असरात थे उन चीजों के जिक्र और अज़कार के। मेरे भाई इस मेहनत का मतलब ये है कि कल जब हम जाएंगे, ये मैंने बातें जो बताई हैं आपको, वहां खेल मुख्तलिफ होंगे। हम तो समझ लेंगे साहब हमने इतनी जिंदगी जिक्र की है, हमने तो जना पीर साहब रहे हैं इतना वो किया है, हमने तो लोगों को इतना बताया है, इतने मुरीद छोड़कर आए हैं, इतने पीछे आदमी छोड़कर आए हैं, हम तो इतने बड़े मुफक्कर थे, इतने बड़े मुहद्दिस थे, हमारे तकरीरों में तो हज़ारों आदमी बैठते थे, लोग बैठते थे। लेकिन ये एक दुनिया की अजीब चीज़ है, जैसे मैंने आपको तीन चंद मिसालें दी, अजीब चीज़ है। जैसे ही पर्दा पड़ता है ना, इसकी हकीकत बदल जाती है, वहाँ खुल जाती है सब, वहाँ वहाँ ख़त्म हो जाती है और हकीकतें सामने आ जाती हैं कि कौन से अमाल अल्लाह कहेगा किधर जा रहा है भाई, इधर, तू तो इधर है। अल्लाह होगा इस बात पे जिस वक्त दिल बन जाता है इंसान का और कोई अमल करता है तो अमल की उसको इतनी खुशी नहीं होती जितनी उस अमल के असर पर उसको वो होता है, फिक्र होता है कि या अल्लाह ये अमल जो मैंने अब कर दिया इसको मैं किस हिसाब में रखूँ, मेरे दिल इसको कैसे कबूल करे, या तो इसका शुक्र इतना हो जाए मेरे दिल के अंदर, इतना आजीज हो जाऊं मैं, तेरा बंदा बन जाऊं कि मैं बस डूब जाऊं इस चीज़ में कि अल्लाह ताला तूने मुझे आज सारा दिन इंसान, यानी आप ऐसा होना है, होना चाहिए मैं जिस लाइन में आप चल रहे हो, मैं चल रहा हूं जिस लाइन में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बिठाया है, ये लाइन का असर यह है, रूह यह है इस चीज़ की, मैं जो बताऊँ तसव्वुफ जिसको कहते हैं, ये रूह है उसकी, कि रूह करने वाले जो तस्किया करने वाले हर वक्त डूबे होते हैं इस फिक्र के अंदर, फिक्र आखरत के अंदर, उनको कुछ पता ही नहीं होता इस चीज़ के अलावा, जो अमाल अल्लाह पाक उनको दे रहे हैं और इतने खूबसूरत खूबसूरत अमाल अल्लाह नवाजते हैं उनको, तो उसी उन्हीं अमालों के ऊपर वो इस तरफ गहरी सोचों के अंदर डूबे होते हैं कि अल्लाह ताला कि क्या, जिस तरह मैंने आपके शाह नक्शबंद रहमतुल्लाह की बात आपके सामने पेश की, तो ये अंदाज था इन तमाम बुजुर्गों का, ये अंदाज रहा है इसी कैफी, कितने मुजाहिदों के बाद भी कुछ उनको समझ नहीं आता कि कुछ किया ही नहीं हमने, है ही नहीं, वो एक्टिंग नहीं होती थी, हकीकत दिल की हालत इंसान की ये हो जाती है। हम तो थोड़ी सी बात पे इतरा जाते, एक रमज़ान हमारा गुजर के बाद ख़त्म, जन्नत पक्की हमारी और कोई कुछ सब बेकार, हम पक्के हैं ठीक ठाक, अल्लाह पसंद करते हैं ऐसी उम्मीदों को, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दिल को तो देखें, अपने दिल को तो देखें कि क्या क्या पैदा की है उसने हमारे अंदर, क्या चीज़ें की हैं। एक तकीर आके करता है, एक आलिम जनाब आके, उसके पास हालत क्या होती है उसकी, क्या अंदर आ जाता है, क्या कैफियत पैदा हो जाती है। हकीकत तो यह है कि जिस वक्त कोई कैफियत ही हो जाए कि जब उस मनसब पर बैठे, कितना बड़ा मनसब है, ये मिंबर रसूल है, मिसाल दे रहा हूँ आपको, इस मनसब तक पहुँचाया तो यहाँ तक पहुँचते ही वो आदमी कांप जाता है कि किस जगह बैठ रहा हूँ, क्या हकलत तेरी, क्या हैसियत क्या है, तू है क्या, वो तू जा किधर है, बैठा किधर है, रोजे क़यामत में तेरा हाल क्या होगा। और जिस वक्त वो कोई नसीहत शुरू करे तो उसका अंदाज नसीहत का ये हो कि उसका दिल फट रहा उस चीज़ से, उस क्रिया से दिल फट रहा उसका कि भाई मैं किस हालत के अंदर हूँ। हकीकत तसव्वुफ ये है मेरे दोस्त, और ये बनता है अल्लाह के जिक्र से ही है, लेकिन सबसे पहले नीयत बनानी पड़ती है, जैसे हमारे कहते हैं तबलीग के अंदर सबसे पहले क्या बनाए, इरादा। हम ये नीयत ही नहीं बनाएंगे कि हम इस किस्म का इंसान नेक बनना है,
वो मेहनत हमारी चलेगी नहीं, उस मेहनत में लज्जत भी नहीं आएगी। हमने नीयत ये करनी है, अल्लाह ताला इतना पाक और साफ दिल कर दिया हमारा, इतना हसास दिल कर दिया आखिरत के बारे में, इस कदर हसास और सेंसिटिव दिल हो कि हम सोच भी ना सकें कि अल्हम्दुलिल्लाह एक एक चीज़ को किस तरह ग्रिप कर रहा है वो, एक एक अमल को किस तरह ग्रिप कर रहा है, किस अंदाज से वो सोच रहा है। इतने फ्री हैंड ना हो जाए बिल्कुल, बस नमाज पढ़ी तो जन्नत फिर दो, ये किया तो फलां, ये किया तो बस वो हो गया, ये किया तो इतना हो गया। मांगने में कोई हर्ज नहीं, सोचने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन जब दिल एहसास पैदा हो जाता है तो फिर वो और चीज़ बन जाती है। सही है नहीं मेरे भाई, मुझे भी मेहनत करनी चाहिए इस चीज़ की। और असल चीज़ यह है कि जैसे मेरे हजरत नवर फरमाते थे कि भाई मकसद मुक्ता दिल जिक्र नहीं है, जिक्र तो इलाज है। आखिर तो अपने आप को देखा करो, जैसे शीशे में खड़ा होकर आदमी देखते हैं अपने आप को, तो मैं कितना ठीक ठाक हो वापस जा रहा हूँ। अपना खुद तजिया करना चाहिए आदमी को कि मैं हूँ क्या, मेरे जिक्र के असरात कितने हैं। इस पर फ़ख्र नहीं 30 साल जिक्र किया, 50 साल शेख के पास बैठे और 60 साल बैठे हो, 30 साल से हम लगे हुए हैं जी, 50 साल से लगे हुए हैं जी, ये सब कोई बात नहीं। दिल में जाके क्या हो रहा है, वो अमल गंद बन रहा है, वो गंद बन रहा है इन बातों को, इस किस्म के बकवासबाजी दिल के अंदर जो बुखारात आ रहे हैं ना, तो बस अभी मिल जाएगी खिलावत 40 साल में, 50 साल में, 30 साल में, कभी नहीं, कोई ऐसा नहीं। हकीकत यह इंसान को सोचना ये चाहिए कि भाई कुछ भी रुतबा मिले, कुछ भी दे अल्लाह की तरफ से, वो किसकी है, अता अल्लाह की है सब। अगर थोड़ा सा एक अमल नसीब हो रहा है अल्लाह कहने का, तो किसका फजल है, अल्लाह का फजल है, उसका करम है, उसकी इनायत है। इतना इंसान डूब जाए उसके शुअर के अंदर के, क्योंकि जब हम जानेंगे कितनी बड़ी चीज़ है। जैसे अभी आपको बुला के कहते हैं ले भी, ये 3 लाख पाउंड है जनाब, ये मकान आपका, ये सब कुछ आपका, 3 मकान आपके, 4-5 मकान, क्या हाल होगा शुक्र में हमारे, भाजी भाजी शुक्र में डूबा होगा इंसान। ये तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह ताला का अपना नाम दे रहा है, वो इतना बड़ा नाम दे रहा है कि पूरी सल्तनत दे दी उसने, पूरी जन्नतें दे दी उसने, दिल के साथ एक दफा आपने अल्लाह कह दिया। लेकिन एहसास है किसी को, मुझे बताए किसी को एहसास है हमारे में इस चीज़ का, इतने दिनों से हम अल्लाह का जिक्र रहे हैं, किसी को एहसास नहीं चीज़ का। वाकई वही होगा, याद रखें इस पर गवर्न कोई नहीं, जब वहाँ जाएंगे तो पता नहीं अल्लाह ताला कहेगा कि इनको राइट करो या लेफ्ट करो, कोई अमाल काम नहीं आएंगे। बल्कि क्या अल्लाह ने क्या कहा था, हज़हबू भी अब्दी गिला जन्नति भी रहमत, सारी रहमत का मामला है उसका, सारा रहमत का मामला है, कोई ना अमाल काम आएंगे, ना कोई जिक्र काम आएगा, ना फजल काम आएगा, बस ये ज़मीन की जो खेती है ना, इसको इंसान सही कर ले, इसमें एक छोटा सा बीज आप डाल देंगे ना अल्हम्दुलिल्लाह, इस ज़मीन को सही करके एक दरख्त भी लगा दें ना इसमें, उस जन्नत को आप घेर लेगा वो दरख्त आपको इंशाअल्लाह, ऐसा प्यारा दरख्त बन जाएगा। अल्लाह पाक हमें तौफीक नसीब फरमाए।